हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में एक विशेषता यह है कि भगवान कृष्ण गोलोक धाम में बैठकर जब इस लीला की स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे कि मैंने धन्य कलयुग में भूतल पर जाकर जो लीलाएं करनी है, क्या क्या लीला मैं करूंगा और अपने पार्षदों से क्या क्या करवाऊंगा, वो जो भगवान ने उसकी संरचना करी लीलाओं की, उसमें भगवान की भक्ति के जितने भी तरीके हैं उन तरीकों को, भक्ति अंगों को, भक्ति की क्रियाओं को भगवान ने स्वयं करके दिखाया चैतन्य लीला में। और एक एक प्रकार की शिक्षा देने के लिए भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, हरि नाम का प्रचार कैसे करना चाहिए, पापी से पापी व्यक्ति किस तरह से परम वैष्णव बन सकता है, ये एक एक तरह की शिक्षा देने के लिए एक एक तरह के पात्र को तैयार किया, जिससे कि भविष्य में आने वाले लोगों को एक एक एग्जाम्पल मिले, इस अवस्था में यह करना चाहिए, इस अवस्था में ऐसा करना चाहिए। उसमें एक लीला है महाप्रभु जी की कि महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे हैं, इतने में मुरारी गुप्त आते हैं। मुरारी गुप्त बहुत ही निष्ठावान श्री राम भक्त हैं। मुरारी गुप्त को देखकर महाप्रभु जी ने नंदनंदन श्री कृष्ण की महिमा बोलना शुरू किया, नंदनंदन श्री कृष्ण की रूप माधुर्य का वर्णन किया, उनके गुणों के माधुर्य का वर्णन किया, उनके सौंदर्य का वर्णन किया, उनके वेणु माधुर्य का वर्णन किया, बहुत तरह का वर्णन किया। वर्णन करने के बाद फिर बातचीत करते करते बोलते, मुरारी सुना, नंदनंदन श्री कृष्ण की भक्ति में कितना आनंद है और नंदनंदन श्री कृष्ण किस तरह से सर्वोत्तम है। तो मुरारी गुप्त, तो प्रभु क्या कहना चाहते आप? कहते, मुरारी मैं ये चाहता हूं कि तुम भी कृष्ण भजन करो। मुरारी गुप्त ने हाथ जोड़ दी, कहते, प्रभु आप कह रहे हैं, आपकी आज्ञा कैसे उल्लंघन करूंगी? ठीक है, आज्ञा को सिर धारे करके मुरारी गुप्त अपने घर चले गए। घर में उनके जो उनका घर है, छोटा घर है, उस घर में उन्होंने अपने इष्ट देव अपने प्रभु श्री राम जी का दरबार बनाया हुआ है। वहां पर पहुंचते ही असमंजस की स्थिति मुरारी गुप्त की हो गई। सोचने लगे कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मैं तो अपने सर को समर्पित कर चुका हूं श्री राम जी के चरणों में, अपने आप को बेच चुका हूं मैं श्री राम जी के चरणों में, पर आज मुझको स्वयं भगवान आदेश किए हैं कि आप नंदनंदन श्री कृष्ण का भजन करें, तो मैं कैसे भगवान की आज्ञा उल्लंघन करूं और दूसरी ओर मैं कैसे अपने सर को श्री राम जी के चरणों से उठाकर कृष्ण की ओर ले जाऊं, जिनके चरणों में मैंने अपने सर को बेच दिया है हमेशा के लिए, वहां से सर उठा कैसे सकता हूं मैं, श्री राम जी को छोड़ कैसे सकता हूं मैं, लेकिन दूसरी ओर मैं महाप्रभु की आज्ञा भी उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। इस असमंजस की उहापोह में या अर्जुन जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में सारी रात गुजर गई। अगले दिन जब मुरारी गुप्त जी महाप्रभु को मिले तो महाप्रभु का, मुरारी कुछ परेशान से नजर आ रहे हो? कहते, परेशान क्या प्रभु, मैं तो बड़ी विषम परिस्थिति में उलझ गया हूं। क्यों, क्या हुआ? कहते जब मैं घर गया, मैंने श्री राम जी का दर्शन किया और सोचने लगा, प्रभु आपके चरणों में मैं अपने सर को बेच चुका हूं, आपके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, आपके चरणों से कैसे अपने मस्तक उठाऊंगा, श्री राम जी के चरणों से अपने मस्तक कैसे उठाऊंगा, मैं तो उसके बारे में साहस ही नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु दूसरी ओर आपकी आज्ञा थी, नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन करो, आपकी आज्ञा भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। कैसे मेरी रात गुजरी, कितना परेशान रहा मैं, कितनी उलझनों में उलझा रहा मैं, कैसे उहापोह की स्थिति मेरी रही, कैसे किम कर्तव्य विमूढ़ रहा मैं, प्रभु मैं तो क्या बताऊं आपको, आप ही समाधान करें। तब चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के मस्तक पर श्री रामदास लिख दिया और कहा, मुरारी तुम राम जी के नित्य सेवक हो, तुम्हारी निष्ठा देखना चाहता था, इष्ट निष्ठा देखना चाहता था मैं कि तुम्हारी अपने इष्ट के प्रति कैसी निष्ठा है। ऐसी इष्ट निष्ठा जब तक नहीं होगी तब तक कोई भी साधक भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता था। तुम्हारे माध्यम से मैं इष्ट निष्ठा का संसार में प्रचार करवाना चाहता हूं। पहले दिन जब नवदीधाम परिक्रमा होती है तो पहले दिन का चैतन्य गौड़िया मठ के भक्तों के द्वारा आखिरी दर्शन यही होता है, मुरारी गुप्त का स्थान जहां पर भव्य मंदिर है, सीताराम जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, उस स्थान का दर्शन होता है। और भी बहुत अच्छे अच्छे स्थान है, हमारी चर्चा चलती रहेगी। हरे कृष्णा।